रूपाली जी, आप इस हालत में अहाना बहू को घर में अकेले छोड़कर कहाँ गई थीं? दुख व गुस्से के मिले जुले भाव उस वक्त अभिजीत जी के चेहरे पर मौजूद थे। रात होने को थी जब रूपाली जी वहां पहुंची थीं। अहाना की पूरी फैमिली हड़बड़ी में यहां पहुंच चुकी थी। उसके मामा भी अपने परिवार संग यहां मौजूद थे। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया था। गमों के बादल उन पर ऐसे छाए कि उन्होंने उनकी सारी खुशियों को निगल लिया। बच्चा तो खो ही दिया था और अहाना की हालत भी गंभीर बनी हुई थी। इन सब का कारण था अहाना का उस वक्त घर में अकेला होना, और यही वजह थी कि अभिजीत जी का गुस्सा और रोष आज पहली दफा रूपाली जी पर फूटा था। रूपाली जी, जो अभी अभी हड़बड़ी में यहाँ पहुंची थी, अभिजीत जी का ये रूप देखकर घबरा गई। हम घर पर थे जब हमें फलक का फोन आया। दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया था और उनके माता पिता फलक को उसके लिए दोषी ठहरा रहे थे। दामाद जी हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे थे। उसकी सास उसे हॉस्पिटल से निकाल रही थी। फलक बहुत रो रही थी। हम डर गए थे कि पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया था, इसलिए हम उसके पास चले गए थे। फोन भी रास्ते में बंद हो गया था तो किसी को बता नहीं सके। वहाँ के हालात संभले तो घर पहुँचे, और जैसे ही अहाना के बारे में पता चला, दौड़े दौड़े यहाँ आए हैं। सुमित के एक्सीडेंट की बात सुनकर अभिजीत जी संग बाकी सभी चौंक गए और साथ ही कुछ परेशान भी हुए, पर अब वहाँ सब ठीक है ये जानकर मन में सुकून उतरा। रूपाली जी के चेहरे पर उस वक्त दुख के भाव मौजूद थे। आखिर उन्होंने अपने पोते को खोया था तो दुख लाजमी ही था। किसी को बताकर तो जाना था मम्मी, ये आवाज़ अन्वय की थी, जिसकी आवाज़ में दुख के साथ नाराजगी भी छलक रही थी। फलक की चिंता उसे भी थी, पर वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में अहाना के साथ क्या से क्या हो गया। हम फलक का सुनकर घबरा गए थे तो जल्दबाजी में निकल गए, ध्यान नहीं रहा किसी को बताना। और वहां जाकर फलक के साथ ससुर का जो व्यवहार देखा, फलक के पास रुककर उन्हें संभालने लगे। उस वक्त हमें क्या पता था कि हमारे पीछे ये सब हो जाएगा। जब गए थे तब तक तो सब ठीक ही था। उन्होंने सफाई पेश की, हालांकि उन्हें इस परिस्थिति में पूरी तरह से गलत ठहराना ठीक नहीं था, पर इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था कि आज जो हादसा हुआ और अहाना की जो हालत थी, उसके लिए उनकी यही लापरवाही जिम्मेदार थी। पर कोई ये बात अपनी जुबान पर नहीं ला पाया। सबकी नाराजगी भरी निगाहें उन पर टिकी थीं, जबकि अक्षय एक कोने में भावहीन सा खड़ा एकटक अपनी बाहों में मौजूद रुई के साफे जैसे कोमल नाजुक बेटे को देख रहा था। अपने माँ बाप जैसे ही दूध सा गोरा रंग था उसका, और उस छोटे से चेहरे पर मासूमियत बिखरी थी। वो एकदम खामोश था और उसकी आंखें बंद थीं, जो अब कभी नहीं खुलनी थीं। कुछ देर पहले ही डॉक्टर ने बच्चे को इन्हें सौंप दिया था, और उसे देखते ही सबकी आंखें भीग गई थीं। सबने उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार भी किया और आंसू भी बहाए, पर अक्षय बस भीगी निगाहों से एकटक उसे देखे जा रहा था। अहाना की हालत गंभीर थी, उसका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया है और होश में आना ही नहीं चाहती है। अपने दिल पर पत्थर रखकर अक्षय ने फैसला किया कि अहाना को बच्चे की शक्ल नहीं दिखाएंगे। वैसे भी अभी उसे होश नहीं आया था, और उस जैसी नाजुक दिल की लड़की अपने नवजात शिशु का मृत शरीर देखने जैसा आघात सह नहीं पाएगी। डॉक्टर का भी यही कहना था कि उसे कब होश आएगा इसका कुछ पता नहीं, और बच्चे के मृत शरीर को यूं रखना ठीक नहीं है, तो अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बाकी सबने सुबह तक इंतजार करने कहा। आंखों ही आंखों में रात कट गई, पर अहाना की हालत में कोई सुधार नहीं आया। परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ बच्चे को अंतिम विदाई दी गई। उस नन्हे राजकुमार को नए नए कपड़े पहनाकर घर से विदा किया गया था। कब्रिस्तान में उसके मिट्टी के शरीर को मिट्टी में दफना दिया गया। सबकी आंखें भीग गई थीं और हर दिल रो रहा था। अक्षय की आंखों से भी आंसू बरसे थे, पर उसने खुद को संभाल लिया क्योंकि उसे अहाना को संभालना था। देखते देखते 3 दिन बीत गए थे। अहाना को अब भी होश नहीं आया था। आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था उसे। उसका दिमाग जैसे एक लम्हे में ठहर गया था और उसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर के साथ साथ सब परिवार वाले भी चिंतित थे, और अहाना के टेम्प्ररी कोमा में जाने के आसार नजर आ रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में सब एक दूसरे के सहारा बन रहे थे। किसी को भी अहाना के पास जाने की इजाज़त नहीं थी। एक नर्स हमेशा अहाना के पास रहती थी, और अक्षय, जो खुद एक डॉक्टर था, उसे भी अंदर जाने की इजाज़त थी। फलक को जब इस बारे में पता चला तो वो भी बहुत रोई थी और खुद को इन सब का जिम्मेदार ठहरा रही थी, पर अक्षय ने उसे संभाल लिया था। सब हॉस्पिटल आते जाते रहते थे। जयंती जी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ने लगी थी। दोनों परिवार पर मुश्किल वक्त आया था, और गम के बादल छटने को तैयार ही नहीं थे। रात का वक्त था। आईसीयू में अहाना बेड पर लेटी हुई थी। उसका बेजान शरीर कई मशीनों से घिरा था। अहाना के बेड के पास टेबल लगाए बैठा अक्षय काफी देर से एकटक अहाना के चेहरे को देख रहा था, जो पीला पड़ गया था। वो रौनक कहीं खो चुकी थी, और उस बेजान चेहरे पर दर्द की छुटपुट बूंदें बिखरी हुई थी। आंखें अंदर धंस गई थी, होंठ सूख कर उन पर पपड़ी पड़ गई थी। उठ जाइए अनु, और कितना तड़पाएंगी आप मुझे? 4 दिन बीत गए, आपकी आवाज़ सुने। हमारा बेटा तो हमें छोड़कर चला गया, कम से कम आप तो लौट आइए मेरे पास। आपको इस हालत में नहीं देखा जाता मुझसे। प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए,
देखिए मुझे, मैं आपके पास हूँ। आपने मुझे उस दिन जल्दी आने को कहा था ना, तो आया था मैं जल्दी, पर आपने मेरा इंतजार नहीं किया और अब मुझसे नाराज होकर मुंह फेर लिया है। ऐसा तो नहीं चलता अनु, प्लीज मुझे और मत सताइए। डर लगने लगा है मुझे कि कहीं आपको भी खो ना दूं। उसका गला रुंध गया था, आंखों से आंसू छलक आए थे। बीते दिनों उसने अपने दर्द को अपने सीने में दफनाकर बाकी सबको संभाला था, खुद बेहद तकलीफ में होकर भी सबसे अपने आंसू और पीड़ा छुपाकर खुद को मजबूत दिखा रहा था। पर अब हाना के आगे कमजोर पड़ गया था वो, उसकी हिम्मत टूटने लगी थी और उम्मीद की जिस नाजुक डोर को थामे वो सब्र कर रहा था, अब वो डोर छूटती जा रही थी। उसका सब्र बिखरने लगा था। अक्षय ने अपना वादा निभाया था, उस दिन जल्दी उसके पास पहुंचा था वो, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। उसे कहां पता था कि ऐसा कोई हादसा हो जाएगा और उनकी खुशियां यूं एक झटके में उनसे छिन जाएंगी। बच्चा तो खो दिया था और आहाना की ये हालत उसे तोड़ती जा रही थी। उसके शब्द आहाना के कानों तक पहुंच रहे थे और उसका दिमाग, जो बीते दिनों से सुन पड़ा था, उसने एक बार फिर काम करना शुरू कर दिया था। बंद पलकों के आगे उस दिन जो हुआ वो किसी चलचित्र की भांति घूमने लगा था। अक्षय उसकी हथेली को अपने माथे से लगाए, सर झुकाए दुखी और मायूस सा बैठा था, जब अचानक ही उस कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए एक तेज आवाज उसके कानों से टकराई। अक्षय जी,